अब आती है अल्लाह ताला उन लोगों को। देखें, जब ईमान वालों की बात आती है ना, ये जैसे आगे बात आ रही हूँ, जब भी कहा जाएगा ना ईमान वाले, तो ईमान वालों में सारे ही लोग हैं, जो कमजोर ईमान वाले हैं, जो मुश्किल से चल रहे हैं, जो अब बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ईमान वाले हैं, सब ईमान वाले हैं। अब उनको जो जिन्होंने ऐसी बातों में जो आ रहे हैं, आप देखें कि अब इस वक्त क्या बातें हो रही थी मदीना में, क्या बातें होनी शुरू हो गई। जो मुनाफिकीन थे और जो यहूद थे ना, उनको बस समझने का मौका हाथ आ गया कि लो जी देखो जी, ये कहते अल्लाह के पैगंबर हैं, तो अल्लाह के पैगंबर हैं फिर इनको कैसे शिकस्त हो गई, फिर इनके साथ कैसे ये हो गया, और ये क्या हुआ कि जो है ना फिर ये इस दीन का क्या, फिर क्या इसके अंदर सच्चाई रह गई कि ये तो इतनी इनको मतलब शिकस्त से दो चार होना पड़ा, पसपाई इख्तियार करनी पड़ी, इतने लोग शहीद हो गए, ऐसा हो गया, तो ये क्या फिर बात हुई। तो अब मुनाफिकीन ने बहुत बातें बनानी शुरू कर दी थी, एक नेगेटिव प्रोपोगेंडा। अगर सच्चे नबी होते तो क्यों शिकस्त खाते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज भी है ना। आज दुनिया में कई लोग कहते हैं अगर इस्लाम सच्चा दीन होता तो ये आज इस तरह जलील हो रहा था दुनिया में। और उन्होंने भी कहा ये बस देखो जी, ये चंद दिन का जोश था नौजवानों का, बस अब ये जोश ठंडा पड़ गया, ऐसे ही थोड़े से लोगों को मरवाने के लिए ले गए, जब पता था आगे से इतनी बड़ी कुव्वत आ रही, क्या जरूरत थी इनको ले जाके उनसे टकराने की, और अगर ये अल्लाह के नबी थे इनका फैसला कैसे गलत हो गया फिर। ये इनकी सारी इनकी गलत पॉलिसीज हैं, इसकी वजह से हुआ, इन्होंने गलत डिसीजन लिया, जाके भाई लड़ना ही नहीं चाहिए था। देखें जब लीडर के खिलाफ लोगों को कर दिया जाए ना, और लोगों के दिलों में बदगुमानियां डाल दी जाए, वो फिर बस काम ही पूरा हो गया दुश्मनों का, फिर और क्या रह गया। आज भी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, या किसी भी और आप कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, कोई जगह देख लें जहां पे लोग मिल के काम कर रहे हैं, अगर उनके लीडर से ही लोगों को बदजन कर दिया जाए तो सबका शिराजा बिखर जाएगा, वो काम नहीं सही हो सकेगा। तो अब यहां पे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को टारगेट बनाया और बदगुमानियां फैलानी शुरू कर दी, और इन बातों से बाज लोग मुतासिर भी हो रहे थे। तो देखते हैं आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन तुतीउ, अगर तुम इताअत करोगे। इताअत का माना यहाँ पे क्या है, एक तो इताअत होता है ना किसी की बात मान लेना, लेकिन बात मानना तो सेकंड स्टेप है, पहले इताअत में पहले बात सुनी जाती है फिर ही मानी जाएगी ना। अब जैसे हम आपको कहते हैं कि भाई आए आपको कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह की बात सुनेंगे तो इताअत करेंगे ना, वो फिर ही बात मानेंगे ना, अगर बात ही कान में नहीं पड़ती तो इताअत किस चीज की करेंगे। तो पहला स्टेप इताअत में क्या होता है कि आप बात को सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, फिर इताअत होती है। तो इन तुतीउ, अगर तुम इताअत करोगे यानी सुनोगे उनकी बातें, और फिर उसके मुताबिक उसका असर कबूल कर लोगे, उनकी बातों को सुन के उनको मान लोगे, वैसे ही करना शुरू कर दोगे। किन की, अल्लदीन कफरू, उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया, यानी मुनाफिकीन और ये यहूद, और जिन्होंने ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया हुआ था यानी दीन के मामले में, या रुद्दूकुम अला आकाबिकुम, वो फेर देंगे तुमको तुम्हारी एड़ियों के बल, फतनक़लिबू खासिरीन, तो तुम लौट जाओगे खसारा पाने वाले होके, यानी जहन्नमी बन जाओगे तुम, अगर तुमने इनकी बातों को लिया, इसका असर लिया। कब होता है लोगों की बातों का असर, उनके इस किस्म के नेगेटिव प्रोपेगेंडा का असर कब होता है, जब इंसान का अपना अंदर कमजोर हो, तब कोई भी कोई बातें करता है तो दिल पे लग जाती है। क्यों, कबायर सहाबा जो थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर अली, इनके क्यों नहीं दिल मुतासिर हुए, इसलिए कि वो चट्टान की तरह थे, उनको कोई हिला नहीं सकता था, वो रब्बानी थे, इसलिए कहने वाले भी डरते थे कि इनको ना कहें, मगर जहां पे पता होता है ना कि यहां पे इमारत कमजोर है, एक धक्का देंगे तो गिर जाएगी, वहां पे काफिर अपना जोर लगाता है फिर। और आज भी यही हो रहा है, आज हमारे नौजवानों के लिए इंटरनेट पे ऐसा प्रोपोगेंडा किया जाता है जिससे वो इतने मुतासिर हो जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को डाउटफुल बना दिया जाता है, उन पे क्रिटिसाइज किया जाता है, और ऐसे बातों बातों में कि जैसे कि वो बड़े मासूम हैं और उनको नहीं पता। अच्छा, ऐसे तुम्हारे नबी ने किया? अभी पिछले दिनों ही के एक लड़का रिवर्टेड मुस्लिम, तो उसने मेरे से सवाल किया कि बनू कुरैज़ा पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको कत्ल करा दिया था, तो ये कितना बड़ा जुल्म था, तो आप इसको किस तरह बताती हैं? अब देखें, जिसने सीरत ना पढ़ी हो, जिसको पता ना हो कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, वो तो फिर इन नेगेटिव, अब उसने जाहिर है बैठ के कहीं इंटरनेट पे ही देखा, या जिसने भी उसको कहा, जिसको जाहिर है इस्लाम की इतनी डिटेल पता थी कि बनू कुरैजा का पता है और सारा पता है, तो उसी ने इसको बहकाने की कोशिश की ना। तो वो लोग खुद तो अपना पूरा होमवर्क करके रखे होते हैं। अब हमारे बच्चों को, जवानों को, हमारे जवानों को तो छोड़ ही दें, हमारे तो डेढ़ उम्र लोगों को नहीं पता, उनको नहीं सीरत का पता, उनको नहीं पता क्या था इस्लाम के अंदर, क्या चीज कैसे है और इसके पीछे क्या असल वाकया था। तो जब ऐसे लोगों के साथ वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो डाउटफुल हो जाते हैं, और फिर उनपे जब एतराजात ऐसी हस्तियों पे किए जाते हैं, कभी सहाबा के ऊपर, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो जाहिर है फिर दिल मुतासिर हो जाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ, खुदा के लिए सीरत को पढ़ें और अपने दीन को भी समझें, वरना इस्लाम दुश्मन कल भी कोशिशों में लगे थे और आज भी उन्होंने अपनी कोशिशें तो नहीं छोड़ी। जाहिर है शैतान तो वही है ना, शैतान तो है मौजूद, और वो बस क्या चाहती है, यरुद्दुकुम अला आकाबिकुम, तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल फेर दे, यानी तुम मुसलमान ना रहो, चाहे अब क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जो मर्जी, वो ये नहीं कहते हमारे दीन में आ जाओ, कहते बस मुसलमान ना रहे। और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी नजर आ रहे हैं। और वजह इसकी क्या है? वजह इसकी यही है कि हमने अपने दीन को खुद नहीं समझा, हम खुद इतने, अब वो हमारे दीन को पढ़ के और उसमें से ये ऐसी चीजें निकालते हैं और हम नहीं जानते कि हमारा दीन है क्या। तो वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं मगर ये चराग उनकी फूंकों से बुझने वाला नहीं है, ये अल्लाह का वादा है। जब तक आपके जैसे लोग मौजूद होंगे ना, जो अपने घर बार, बच्चे, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी जॉबें, सब चीज के आगे दीन को अहमियत देंगे, या आप जैसे लोग वक्त अपना निकालेंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे इल्म लेने के लिए, अपना माल लगाएंगे, अपनी औलादों को इस रास्ते में लगाएंगे, सब कुछ जब तक आप लगाने को तैयार होंगे ना, तब तक वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो हिलाने की कोशिशों से बाज नहीं आएंगे। कभी ये ना समझे कि वो चुप करके बैठ जाएंगे, मगर आगे से होना क्या चाहिए कि उनको मुंह की खानी पड़े, वो कह उठे कि ये मुसलमान बड़े पक्के हैं, बड़े अपने दीन में पक्के हैं, इनको जितना मर्जी कुछ कह लो ये तो हिलते ही नहीं। सच्ची बात यह है कि मुझे आज के मर्दों से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं, वो माश के चक्करों में इतने पड़े हुए कि उनको तो अपना आप ही भूला हुआ, जो बच्चे जवान हो चुके हैं उनसे भी कम ही उम्मीद है। उम्मीद है तो आप जैसे लोगों से कि जो आज सीख रही हैं, जो आज अपनी अगली जनरेशन तक पहुंचा सकती है, इससे इस उम्मत की तकदीर बदल सकती है। आप चाहे माँ हैं, चाहे दादी हैं, चाहे नानी हैं, आपकी की भी आज की मेहनत कल उजड़े बाग में बहार ला सकती है। अपनी जिंदगी का इसको मिशन बनाए और इस मिशन को लेके उठे। अब बस कर दें ये दौड़े फैशन की, बस खूबसूरत से खूबसूरत नजर आने की, कमाइयों की, स्टेटस की, घरों की, बस डेकोरेशन ही हर बात हो, बड़े से बड़ा घर, फोन मेरा लेटेस्ट हो, ब्रांड नेम मेरा ये हो। अगर कुरान पढ़ने वाले भी इन्हीं दौड़ों में लगे रहें तो इस उम्मत की डूबती कश्ती को कौन पार लगाएगा, मुझे बताएं। मर्द सो गए हैं। एक आलिम साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम जो क्लासें शुरू करते हैं उनमें बस औरतें ही भर जाती हैं, मर्द इक्का दुक्का कोई आते हैं। तो अब इस उम्मत की और तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपने अपने लिए नहीं सिर्फ जीना, आपने अल्लाह के दीन के लिए जीना। इमाम इब्ने उकैल हम्बली फरमाते हैं कि मैंने लोगों के हालात देखे तो बड़ा अजीब मुझे लगा कि लोग घरों के उजड़ने पे रोते हैं, प्यारों की मौत पे आहें भरते हैं, माशी तंग दस्ती पे हसरतें करते हैं, हालांकि वो देख रहे हैं इस दीन की इमारत गिर रही है, लोग फिरकों में बट चुके हैं, सुन्नतें मिट चुकी हैं, गुनाहों और बेहयाओं की कसरत है, शिर्क और बिदात का गलबा है, लेकिन फिर भी दीन के लिए रोने वाला कोई नहीं है, दीन के लिए अपनी जिंदगी लगाने वाला कोई नहीं, अपना वक्त खर्च करने वाला कोई नहीं। और वो कहते हैं कि इसकी एक वजह मैं ये देखता हूं कि दीन उनकी नजरों में हल्का हो गया, और दीन इनकी फिक्रों का महवर नहीं है, दुनिया इनकी फिक्रों की महवर बन गई, यानी जिसके गिर्द उनकी सारी सोच घूमती है वो दुनिया है। तो मैं आप सबसे बड़े दर्द से ये कहना चाहती हूँ कि ये कुरान की तालीम को ना एक कोर्स समझ के ना करें कि कोर्स कर लिया, कोर्स कब खत्म होना है, कोर्स कब होगा, कितने महीने रह गए, कितने साल रह गए, नहीं, एक मिशन समझ के इसको हासिल करें कि मैंने दीन को रिवाइव करना है, जिंदा करना। याद रखें कोई और किसी ने नहीं करना ये काम, मुझे और आपको ही करना है। ये ना दूसरों की तरफ ना देखें, वो मौलाना करेंगे, वो ये करेंगे, अगर वो कर सकते होते तो आज तक हो चुका होता, नहीं होना उस तरह से। मुझे और आपको ये सोचना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, बस मैंने ही करना ये काम, ठान लेंगे, और इसके लिए अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह किसी काम का बना दे। तो बात सिर्फ गजवा उहद की नहीं है, बात आज की भी है। और देखिए इसके पीछे बात वही होती है, जब अपना अंदर भी कमजोर है तब फिर दूसरों से इंप्रेस ही होना, या दूसरों की हर चीज ही अच्छी लगती है। जब अपनी इमारत में दराड़ें पड़ी हुई हैं तो दूसरों से आप इंस्ट्रक्शन लेंगे, वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, उनसे लो, क्योंकि अपना अपना दीन हल्का है ना, अपने दीन को तो कुछ समझते नहीं है। तो जरूरत है कि हम पहले अपने दीन को समझें, सीखें, तब इस दीन की अजमत हमारे दिल में आएगी, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, फिर किसी से भी टकराना आसान है, फिर नहीं कोई कुछ आपका कर सकता। लेकिन जब अपने ही अंदर कमजोरी है तो फिर लोगों की बातें भी मुतासिर करेंगी, उनके प्रोपोगेंडाज भी, फिर हम हर वक्त बैठे करते वो साजिश कर रहा है, यहूदियों की साजिश हो गई, फलाने की साजिश हो गई, इसकी साजिश, वो साजिशें तो करने वाले हमेशा से करते हैं। बात यह है कि हम इतने मजबूत हो जाएंगे किसी की साजिश हमें कुछ ना हिला सके। वो आजकल हमारे नौजवानों को वरगला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो हमारे नौजवान क्यों इस हालत में हैं कि उनके पास कोई भी इल्म नहीं है, उनके पास कोई भी जोरे बाजू नहीं है, वो क्यों इतने वीक हैं कि वो हर एक की बातों में ही आ जाते हैं। तो ये बात कि अगर तुमने उनको बात को सुना, बाज दफा हम कहते हैं चलो सुन के तो देखते हैं ना, कहते क्या है जरा सुने, नहीं सुनो भी नहीं, आप सुनोगे तो फिर आपके पास जब खुद नॉलेज नहीं होता आप उनको जवाब तो दे नहीं सकते, फिर मुतासिर हो जाते। तो तुम अगर इनकी बातों पे चलने लगे ना तो ये तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर के हटेंगे, और जब तुम दीन से फिर गए तो फिर उसके बाद क्या है, आज सोचते हैं कि उसके बाद जब हम दीन से फिर जाएंगे ना तो उसके बाद हम पता है क्या हो जाएंगे, मॉडर्न हो जाएंगे, हमारा सॉफ्ट इमेज हो जाएगा, हम रोशन ख्याल कहलाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम दीन के से फिरते हो ना तो बड़ा खसारा है, और इसलिए ये कि दुनिया सारी भी मिल जाए और सारी दुनिया भी आपको शाबाशियां दे रही है, बड़ा अच्छा कारनामा किया, ये दीन में रखा क्या था, बड़ा अच्छा किया इसको छोड़ के, तो तब भी जहन्नुम जो है वो इतना बड़ा खसारा है, सारी दुनिया भी मिल जाए तो वो खसारा इस पे भारी है। बलिल्लाहु मौलाकुम, तुम ये याद रखना, लोग काफरों की इताद क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हाय ये हमारे सपोर्टर हो जाए, ये हमारा सर्वाइवल आसान हो जाएगा, जब ये, हाँ इनके साथ हम मिल जाएंगे ना तो फिर हमारी मदद करेंगे ये, कोई चाहे सुपर पावर है, चाहे कोई माशरे के अंदर ऐसे लोग हैं, हम जिस पर इनके जैसे हो जाएं, असल में इनके जैसे होंगे ना, फिर हम बहुत एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने पता है क्या बताया, ये नहीं फरमाया बल मौला कुमुल्ला, ये भी हो सकता था, मौला कुमुल्ला भी हो सकता था। अल्लाह ताला ने फरमाया बलिल्लाहु मौलाकुम, इसका मतलब अल्लाह ही तुम्हारा मौला है, कोई और तुम्हारा मौला नहीं बन सकता। मौला मतलब मददगार, सपोर्टर, हिमायती, तुम्हारा दोस्त। मौला के ना 16 माने हैं, तो अल्लाह है तुम्हारा मौला, कोई और नहीं मौला हो सकता। वह खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मदद करने वाला है। तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि वो तुम्हारी मदद करेगा, उधर उधर गिर रहे हैं, उधर पड़ रहे हैं, उसकी इताअत कबूल कर ली, उसकी बात मान ली, ये हमारे बुरे वक्तों में हमारे काम आएंगे, कोई नहीं आएगा। जिसको अल्लाह की मदद मिले बस वो ही कामयाब है। जब मुश्रिकीन मक्का जो है वापसी के लिए तैयार हो गए थे, तो अबू सुफियान, अब एक तरह से उन्होंने देख लिया कि मुसलमानों को तो पसपाई हो गई। अबू सुफियान उस वक्त जबले ओहद पे खड़ा होके ऊंची आवाज से कहता है, क्या तुम में मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया इसको जवाब ना देना। किसी ने नहीं जवाब दिया। फिर कहने लगा, क्या तुम में अबू कहाफा के बेटे हैं, यानी अबू बकर सिद्दीक? देखें, काफिर को भी पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन है। आज लोग लड़ते हैं, नहीं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो उनको गलत बनाया गया, उनको नहीं बनाना चाहिए था। नहीं, उन काफिर को भी पता है कि उनके बाद किसका नंबर आता है। फिर आपने फरमाया नहीं, कोई ना जवाब दे। फिर उसने कहा, क्या तुम में उमर बिन खत्ताब हैं? फिर आपने फरमाया कोई जवाब ना दो। अब उसने कहा, चलो अच्छा है, इन तीनों से तो फुर्सत मिली, यानी ये खत्म हो गई है। ये सुन के हजरत उमर बेकाबू हो गए, बोले अल्लाह के दुश्मन, जिनका तूने नाम लिया सब जिंदा है, और अभी अल्लाह ने तेरी रुसवाई का सामान बाकी रखा है। तो अबू सुफियान ने कहा, तुम्हारे जो मकतूल हैं उनका मुसला हुआ है, म्यूटिलेशन यानी कान नाक काट दिए, आजा काट दिए। हालांकि उस जमाने में भी जंगों में इस चीज का बुरा समझा जाता था। तो कहने लगा, लेकिन मैंने इसका हुक्म नहीं दिया था, मैंने नहीं कहा था कि ये करो, मगर मैंने इसका बुरा भी नहीं माना, मैं इससे मतलब नाराज भी नहीं, अगर हो भी गया तो कोई ऐसा नहीं है, मगर मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इसका कहा नहीं था। और उसने नारा लगाया, ओलू हुबल, हुबल बुलंद हो, यानी जैसे हम कहते हैं ना जिंदाबाद, तो उसने ये कहा कि जिंदाबाद, उसकी जय वो हुबल की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको जवाब दो। हुबल उनका बड़ा बुत था। तो साहबा ने पूछा, या रसूल क्या जवाब दें? आपने फरमाया, कहो अल्लाहु आला व अजल, अल्लाह आला और बरतर है। तो अबू सुफियान ने फिर नारा लगाया, लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे लिए तो उज्जा है, तुम्हारे लिए तो कोई उज्जा नहीं, यानी तुम हमारा तो इतना बड़ा बुत हमारे साथ है, तुम्हारे साथ क्या है, तुम्हारे साथ उज्जा तो नहीं है। तो उज्जा उनके लिए बड़ा बड़ी चीज थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको जवाब दो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं है। तो सहाबा ने फिर ये कहा था, और इसके अंदर ये इतनी बड़ी बात है ना कि अल्लाहु मौलाना, ये बात कहने से ही इंसान को इतनी ढारस मिल जाती है, इस बात का यकीन कितना सुकून दिल में उतार देता है कि हम अकेले थोड़ा ही हैं, हम अकेले थोड़ा ही, हमारा मौला तो जहानों का मालिक है, वो जहानों का जो बादशाह है ना, वो हमारे साथ है, वो हमारा सपोर्टर है, हमें किसका बात का फिर डर? जिसके साथ अल्लाह हो गया, फिर उसको तो किसी की भी जरूरत नहीं। और इसमें पता चलता है अल्लाह ताला के साथ एक बहुत क्लोज ताल्लुक जो सिर्फ मोमिन का हो सकता है, कि वो अल्लाह को अपना मौला बनाता है, बाकी इन्होंने तो किसी को क्या क्या बनाया हुआ है। और फिर इंसान जब ये कहता है ना, तो उसकी नजर अल्लाह पे भी होती है कि अल्लाह, जब मैंने सारों को छोड़ के तुझे मौला बना लिया ना, फिर तू मुझे तन्हा ना छोड़ना, मैंने अकेले तुझ पे भरोसा किया, बाकी सारे सहारे छोड़ दिए, तो अल्लाह हु मौलाना बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, और जिसका मौला अल्लाह हो उसको फिर और कोई मौला नहीं चाहिए, फिर वो बे यारो मददगार नहीं है। ठीक है, तुम चाहे जिसको मर्जी बना लो, उज्जा ले लो, सारे ले लो, तुम जितनी मर्जी सुपर पावरें तुम्हारे साथ हो जाएं, सब ले लो, सब तुम्हारे साथ हो जाएं, लेकिन जब किसी का सहारा और मददगार खुद अल्लाह की जात हो तो फिर कोई उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया फिर वह हुआ खैरुन नासिरीन, फिर उससे ज्यादा बेहतर मदद करने वाला और कौन हो सकता है, वो बेस्ट है मदद करने वालों में। तो ये वो कहते थे ना अल्लाह साथ होता है इनके तो इनके साथ ये होता, फरमाया नहीं वो तो सब आजमाइश थी, असल में तो अल्लाह है मददगार, अल्लाह वलीयुल्लदीना आमन, अल्लाह मददगार है, वली है वो। सनुल्की अन करीब हम डाल देंगे फी कुलूब अल्लदीना कफर, उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया क्या डाल देंगे, अर्रौब रोब डाल देंगे, बीमा अशरकू इस वजह से कि उन्होंने शिर्क किया, बिल्ला अल्लाह के साथ, मा लम युनज़िल बिही सुल्ताना जो नहीं उसने नाजिल की इसकी कोई दलील, किसकी शिर्क की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अनकरीब हम उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया रोब डाल देंगे, और यही हुआ, काफिर लोग जब मुड़ के गए, और मैंने आपको बताया था हमराउल असद में जाके वो रुके, उन्होंने कहा हमने तो इनको कुछ किया ही नहीं, हमें तो वापस जाना चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए बिल्कुल, ये क्या फतह हुई, ये तो कोई जीत ना हुई, कि वो तो वही मैदान जंग में थे हम आ गए वहां से। लेकिन फिर ऐसा रोब उनके दिल में पैदा हुआ, और ये रोब किस वजह से होता है, क्या वजह होती है रोब की, शिर्क, शिर्क होती है रोब की वजह, और इस शिर्क की अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी इस कायनात में। तो इसका मतलब है कि जो मुवाहिद होता है ना तौहीद वाला, वो कभी डरता नहीं है, वो कभी रोब में नहीं आता, इसलिए कि उसका ईमान अल्लाह के ऊपर है, और जो मुशरिक होता है वो कभी इससे डरता है कभी उससे डरता है, इसलिए उसलिए कि वो उसको होता है ना ये मुझे नुकसान पहुंचा देगा वो मुझे कुछ कर देगा, उसका डर हर एक चीज से। लेकिन जो मुवाहिद है तौहीद वाला है उसको किसी से खौफ नहीं होता, रोब नहीं, रोब में नहीं आता, वो मरूब नहीं होता, तो उसको पता होता है मेरे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, तो फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब तौहीद का असर है, और आज हम देखते हैं जब कि मुसलमान डर रहे हैं, कभी इससे डर रहा है कभी उससे डर रहा है, कभी दुनिया के कोई ताकतों से डरने लगे हुए, कभी लोगों से डर रहे हैं, कभी हर एक का खौफ अगर दिल में तारी है, तो इसकी जानते हैं वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि तौहीद का अकीदा हमारा सही नहीं है। अगर तौहीद सही हो दिल के अंदर तो फिर तौहीद परस्त तो खौफजदा होता ही नहीं, ठीक है ना। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो आपको पता है ना, हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसा रोब दिया था एक महीने की मुसाफत से दुश्मन डरता था। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब की नहीं बात हो रही, यहाँ पे आम अहले ईमान के रोब की बात हो रही। तो अहले ईमान जो तौहीद वाला होता है ना मौत से डरता है ना किसी ताकत से, तो कौन सी चीज है जो उसको कुव्वत देती है, तौहीद, और बुजदिली आती है शिर्क की वजह से, ठीक है। तो जब आप आज उलट हालात देख रहे हैं कि मुसलमानों के दिलों में काफरों के रोब हैं और उनकी दहशत छाई भी है, तो आप ये देख लेना कि हमने ईमान में अपने कहाँ कमी की हुई है, हमारे तौहीद के अकीदे में कमजोरी कितनी है। इंसान उतना ही नडर होगा जितनी तौहीद उसकी स्ट्रांग होगी, और उतना ही डरपोक होगा जितनी तौहीद में वीकनेस होगी, ठीक है। और तो शिर्क की कोई इस दुनिया में दलील नहीं, तौहीद की तो दलील हर तरफ है, आप आसमान की तरफ देखें, जमीन की तरफ देखें, पल पौधों की तरफ देखें, हर तरफ आपको पता चलेगा कि सब गवाही दे रहे हैं कि एक ही है कोई हमें बनाने वाला और चलाने वाला, लेकिन शिर्क की कोई दलील नहीं इस कायनात में। वह हुमुन्नार जो मुशरिक है उसका ठिकाना जहन्नम है, और भी समस व जालिमीन, और कितना बुरा ठिकाना है जालिम का, ये जालिम ही है जो शिर्क, जो सबसे बड़ा जुल्म जो है ना वो शिर्क है, कितना बुरा ये बुराई के लिए कहा गया, जब एप्रिसिएशन के लिए कहा जाता है तो क्या क्या, क्या कहा जाता है? वो उसके लिए भी एक कलमा है, किसी चीज को एप्रिशिएट किया जाता है। नियामा, नियामा अजरुल आमिलीन जैसे हमने पढ़ा, इस तरह यहाँ पे बुराई के लिए बेसा, तो ये ऑपोजिट हो गए। वलकद सदकुमुल्लाहु वअदहु, वो उन्होंने कहा ना, इनके पास कहाँ से कोई, देखो ये तो कहते थे हमें फतह मिलेगी, ये तो ऐसे कहते थे कि अल्लाह का वादा है कि वो हमारी मदद करेगा, और तो ये क्या बात हुई, इनके तो कोई मदद नहीं हुई। तो अल्लाह ने तो अपना वादा पूरा किया, अल्लाह ताला फरमाए तो मुझे नहीं कह सकते कि मैंने नहीं अपना वादा, मैंने तो अपना वादा पूरा किया, तुम्हें फतह अता फरमाई, और वाकई मुसलमानों को फतह मिल गई थी, ऐसी फतह, वो तो भाग रहे थे। यानी कि इसमें आता है कि सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि उस वक्त जिस वक्त के काफिर भाग रहे थे, उनको यानी जो उनको जोश दिलाने वाली औरतें बड़ी उनके अंदर वो साथ अपने लाए हुए थे, जो बड़े दफ बजा बजा के जो उनकी शुरू के अंदर बड़ी हौसला अफजाई कर दी, वो भी अपने कपड़े उठा के ऐसे भाग रही थी कि उनकी पाजेबें नजर आ रही थी, वो ऐसे सरपट दौड़ रहे थे। यार मुसलमान उनको मार भी रहे थे, गनीमत का सामान भी लूट रहे थे। तो अल्लाह ने तो अपना वादा पूरा किया, इस तहसुना हम भी इज़्ज़नी, जब तुम उनको कत्ल कर रहे थे उसके इज़न से, मैंने आपको बताया कि वो तो उनको खत्म कर रहे थे। हत्ता इदा फशिल तुम, यहां तक कि जब बुजदिली दिखाई, हिम्मत हार दी, यानी कमिटमेंट अपनी छोड़ दी ना, वह तनाजा तुम फिल अम्र, झगड़ा किया तुमने मामले में, कैसे बुद्धि दिखाई, कैसे हिम्मत हार दी, कि जिस वक्त नाफरमानी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की, असल में तो तावील उन्होंने कर ली ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये हुक्म दिया था, नहीं उन्होंने तो ये कहा था कि अगर शिकस्त होती है तो फिर तुमने यहां से नहीं हिलना, तो उन्होंने तावील कर ली, तो शिकस्त थोड़ी हुई है, अब तो जंग खत्म हो गई है, अब तो हम जीत भी गए हैं। तो जब उन्होंने उस वक्त इस कमिटमेंट को छोड़ दिया, इताअत में कमजोरी की, और उसके बाद तनाजा तुम फिल अम्र, आपस में उनके झगड़ा शुरू हो गया। वहां पे क्या झगड़ा जमरे रमात पे हो रहा था, कि अब्दुल्ला बिन जुबैर कह रहे थे कि नहीं जाना, और वो कह रहे थे नहीं। उन्होंने जब अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ा जाता है, नबी की इताअत से मुंह मोड़ा जाता है, तो उसमें इन लोग कोई तावील ही करते हैं। साफ तौर पे कोई नहीं कहता कि मैं अल्लाह का हुक्म तोड़ता हूं, उसमें कोई ना कोई ऐसी बात निकाल लेते। तो तुमने झगड़ा किया, आपस में इख्तलाफ किया, वो आसाई तुम मिन बाद इमा अराकुमा तुहिब्बून, और नाफरमानी की तुमने इसके बाद, जो तुम्हें उसने दिखाया, जो तुम पसंद करते थे, क्या दिखाया, किसने दिखाया, अराकुम, अल्लाह ताला ने तुमको दिखाया क्या, जो तुम पसंद करते थे, क्या पसंद करते थे, फतह भी मुराद हो सकती है और माले गनीमत। जब तुम्हें माले गनीमत नजर आया, तब तुमने नाफरमानी की और तुम उतर गए, ठीक है। तो अल्लाह ने तो अपना वादा पूरा कर दिया था, हत्ता कि तुमने ये सा जब तुम मार भी रहे थे उनको, हत्ता कि तुमने ही तो ये काम किया, तुमने तनाजा किया, तुमने नाफरमानी की, तुमने बुजदिली दिखाई, उसके बाद भी भागने शुरू हो गए। तो इससे पता चलता है कि जो तनाजा होता है ना, आपस का इख्तलाफ, वो इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ये जो एक मैंने आपको बताया था अभी पहले भी, कि ये एक हदीस कोट की जाती है, मौजू हदीस है, इट्स फैब्रिकेटेड, कि मेरी उम्मत का जो इख्तलाफ है वो रहमत है, ये तो है ही नहीं है कोई हदीस। इख्तलाफ कैसे रहमत हो सकता है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, फूट पड़ी हुई है, ये कोई रहमत है? तो जब आपस के अंदर तुमने एक दूसरे के साथ इख्तलाफ के बजाय इसके कि अगर एक तावील हो भी गई थी तो अपने अमीर की बात सुननी चाहिए, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बनाया, अमीर की इताअत जरूरी थी, उस वक्त उन्होंने अपने अमीर की बात को छोड़ दिया और वो उतर गए, जिसकी वजह से सारा नुकसान उठाना पड़ा। जबकि अल्लाह ताला ने फतह दे दी हुई थी। तो ये यानी तुम्हारी अपनी कमजोरी की वजह से, तुम्हारी अपनी एक रसूल के हुक्म को तोड़ने की वजह से, तुम्हारे अपने इख्तलाफ की वजह से, ये रीजंस बने तुम्हारी शिकस्त के। तो अब हमें पता चला कि कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से जब किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा होता है, कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, शिकस्त होती है? ये देखें, एक हुक्म की नाफरमानी की थी, खिलाफवर्जी की थी, जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली। और आज हम अंदाजा करें कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने हुक्मों को तोड़ते हैं। और कोई कुछ कहे तो आगे से कहते हैं तो क्या हुआ, हदीस ही तो है ना, तो क्या हुआ, सुन्नत ही तो है ना। और इख्तलाफ में तो हम इतने माहिर हैं कि जहां पे देखो झगड़े, जहां पे देखो झगड़े। देखिए एक बात होती है, पहले भी आपको बताया था, इख्तलाफ राय होने में कोई हर्ज नहीं, सबकी जाहिर है एक राय तो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता आपकी पूरी क्लास को पूछा जाए, किस दिन क्लास ली जाए, तो कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं। जाहिर है अल्लाह ने सबको अकलें दी हैं, अपने अपने मुताबिक सब सोचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जिस वक्त के इख्तलाफ के बाद इंसान ग्रुप बंदियां शुरू कर दे, एक दूसरे के ऊपर अपनी तोपों के मुंह कर लें और फिर एक दूसरे की मुखालफत शुरू कर दें, ग्रोह बंदियों करने लगे, ग्रोहों में बट जाएं, दिलों के अंदर रख के बोझ और उस काम को ही छोड़ दें, हम नहीं करते ये काम, फलाने ने हमें ये कह दिया। तो तनाजा जो होता है ना, झगड़ा, ये चीजों को फॉल अपार्ट कर देता है। मिशंस और इनमें लोगों को मिशन पूरे होने को नाकाम बना देता है। तनाजों से बचना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से, देखें एक जगह पे मुझे अब याद नहीं है कौन सी वो जंग थी कि जिसमें सहाबा कराम जब गए तो कई दिन जंग लड़ते हुए होगा, लेकिन उनको फतह नहीं मिल रही थी उस वक्त। फिर उन्होंने कहा हम कौन सी कोई ऐसी सुन्नत तो नहीं छोड़ रहे, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे, कि क्या वजह है कि क्यों नहीं हम में गलबा अल्लाह की तरफ से मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम मिसवाक नहीं कर रहे, मिसवाक की सुन्नत हमने छोड़ी हुई है। तो सारे के सारे पानी के पास बैठ गए और मिसवाकें शुरू कर दी। दुश्मन के जासूसों ने जब देखा तो उन्होंने जाके उनको इतला दी कि वो लोग तो आदमखोर हैं, वो तो अपने दांत तेज कर रहे हैं तुम्हें खाने के लिए। तो दुश्मन के हौसले पस्त हो गए, तो वहीं से भाग गए। देखो एक नबी की सुन्नत, ये इत्तेबा ने कितना काम दिया। तो सुन्नतें छोड़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को तोड़ना, खुल्लम खुल्ला जिन बातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो हम में से नहीं जो ये करता है, या फलां के ऊपर लानत है, या फलां के लिए जहन्नुम है, तो कहते हैं ये तो हदीस है ना, ये तो हदीस है, तो कोई बात नहीं। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा मा आताकुम रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस चीज को रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जो उससे रोके उसे रुक जाओ। हम कहते हैं नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, कुरान में तो नहीं है ना, कहते हैं कुरान में तो नहीं, हदीस है तो कोई बात नहीं। तो कितनी नाफरमानियां आज हो रही हैं, फिर इसके बावजूद हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमें फतुहात मिले, हमारे साथ अल्लाह की मदद आ जाए, ऐसे नहीं होता। ये सहाबा थे, अल्लाह के चुने हुए लोग, फिर भी अल्लाह ताला ने उनकी इस बात को के ऊपर उनकी पकड़ की। आप सोचते हैं कि हमारी किसी बातों के ऊपर पकड़ नहीं होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की इताअत की उसने भी मेरी इताअत की, और जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। तो अमीर की भी इताअत उनको करनी थी लेकिन उन्होंने नहीं की। तो ये सब रीजंस बने। अब हमें यहां से पता चलता है कि कौन सी चीजें रीजंस बनती हैं जब मिशन नाकाम होते हैं, जब फतह भी हो जाए तो शिकस्त में बदल जाती है। और फिर नाफरमानी कब की? जब उसने तुमको दिखाया जो तुम पसंद करते हो, जो तुम पसंद करते थे ना, वो जब तुम्हें नजर आ गया माले गनीमत, क्योंकि आगे आ रहा है मिन को मई उरीदु दुनिया, तो दुनिया तुम्हें नजर आई तो तुम भाग पड़े, तुमने सोचा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। और आज भी ऐसा होता है, लोगों को जॉब मिल जाती है, कुरान की क्लास छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं अब जॉब मिल गई है। अल्लाह दिखाता है ना, जिससे तुम मोहब्बत करते हो दिखाया, तो फिर कोई दीन याद ही नहीं। तो मिनकुम मन युरीदु दुनिया मिनकुम मन युरीदु आखरा, कुछ तुम में से ऐसे हैं जो दुनिया चाहते हैं, अभी भी उनके अंदर दुनिया की हिरस मौजूद है, और वो थे जो उतर गए, और मिनकुम मन युरीदुल आखरा, मगर सब ऐसे नहीं थे, कोई ऐसे भी हैं जो आखरत चाहते हैं, और वो अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथी जो रह गए थे, जो फिर सबसे पहले शहीद किए गए। तो अल्लाह ताला निकाल लेता है जो दिलों के अंदर होता है ना, अल्लाह ताला उसको बाहर ले आता है। अल्लाह ताला को कोई ये नहीं कर सकता कि नहीं मैं तो बातों से कह दिया और बातों से इसको खुश कर दिया जाए, मुझे तो बस आखरत चाहिए। ये अल्लाह दिखा देता है, सामने आ जाता है। सुम्मा सरफकुम अनहुम लियबतलियकुम, फिर उसने फेर दिया तुमको उनसे ताकि वो आजमाए तुमको। पहले दुश्मन भाग रहा था और तुम पीछा कर रहे थे, उसके बाद दुश्मन पीछे से आ गया और तुम आगे थे। अल्लाह ताला ऐसे हालात लाया कि लियबतलियकुम, ताकि वो आजमाए तुमको, पता चल जाए साबित कदम कौन है और कौन भाग जाने वाले हैं। तुम कहते थे तुम्हें शहादत चाहिए, तुम मौत की तमन्नाएं करते थे, वो अब तुम्हारे सामने आया, अब तुम क्या करते हो। लेकिन सब कुछ कहने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वाला कद अफा अनकुम, अल्लाह ने माफ कर दिया तुमसे। यानी इन सब सहाबा से जो भी गलती हुई, जो उतरे थे या जो भागे या वो, उन सब को माफ कर दिया। और इस माफी के बाद अब कयामत तक कोई भी इन सहाबा के ऊपर ये ताना नहीं दे सकता कि वो तो भाग गए थे या वो क्यों उतरे। जिसको अल्लाह ने माफ कर दिया, हम कोई नहीं होते कि हम उनके ऊपर उंगलियां उठाएं, उनकी बुराई करें। और यहां से हमें ये भी पता चलता है कि देखिए जब अंदर इखलास होता है ना, अंदर उनके तो खलूस था, ठीक है, वो उनसे एक जज्बाती एक फैसला हो गया या स्पर ऑफ द मोमेंट में वो उसके अंदर आ गए, लेकिन उनके अंदर खोट नहीं था, तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। हालांकि एक नुकसान कितना बड़ा उनकी वजह से हुआ, फिर भी माफ कर दिया। हमारी ही किसी चीज का कोई नुकसान हो जाए किसी से, तो हम तो सारी जिंदगी नहीं छोड़ते, मुझे नहीं भूलता वो, उसने ये नुकसान किया था, मेरा ये हो गया था, उस वक्त उसकी वजह से हुआ था, अल्लाह ने माफ फरमा दिया। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, अल्लाह बड़ा फजल करम करने वाला है ईमान वालों पर। यानी अगर कोई ईमान वाला है ना, ईमान सच्चा होना चाहिए, उसके बाद गलतियां हो जाती हैं लोगों से, सहाबा कराम से भी हो गई, क्योंकि गलती से पाक कोई नहीं है, ठीक है, चाहे वो कितना भी नेक हो जाए वो गलती से पाक नहीं है, लेकिन इनके ईमान सच्चे थे ना, तो अल्लाह ताला ने जाने दिया। हम भी ये सोचा करें, अगर कोई मसला नहीं, कोई नेक बंदा है, हमें पता है नेक है, ये अच्छा है, मुखलिस है, मगर इससे कहीं गलती हो जाए तो उसको भी छोड़ भी दिया करें कभी, उनकी गलतियों को हम और हाईलाइट करते हैं कि नहीं देखा इसने ऐसा किया, ये तो बड़े नेक बनते थे, ये तो बड़े कुरान वाले बनते थे, इन्होंने ऐसा किया, तो नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई नेक बंदों से भी गलतियां हो जाएंगी, वो कोई फरिश्ते तो नहीं है। तो अगर वाकई ईमान वाले हैं तो अल्लाह भी माफ कर देता है, ये उसका बड़ा फजल है। इस तुस्इदून वाला तलबून आला आदिन, जब तुम चढ़े जा रहे थे और ना तुम मुड़ के देख रहे थे, यानी सहाबा कराम को कहा जा रहा है कि जब मैंने आपको बताया कि हमला हो गया, इस तरफ से भी वो आ गए वापस और इधर से भी खालिद बिन वलीद अपना दस्ता लेके पहुंच गए, तो आप समझ लें ऐसे कि दोनों तरफ से उनको चक्की के दो पार्टों में पीस दिया जाता है ना, समझ, इधर से भी राइट एंड लेफ्ट सैंडविच बन गए कि बीच में आ गए वो, और उस वक्त वो हालत थी, इतनी केओस थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहे हैं, वर रसूलु यदउकुम फी उखराकुम, रसूल तुम्हें पीछे से पुकार रहे हैं, मुसलमानों किधर जा रहे हो, मेरी तरफ आओ, इलैया इबादल्लाह, मेरी तरफ आओ, मुड़ के आओ, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था, तुम पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे थे, तुम भागे चले जा रहे थे। फअथाबकुम गम्मन बिगम्मिन, फिर तुम्हारे पर उसने दिया गम के बाद गम, देखिए ना एक के ऊपर एक उनके ऊपर मुसीबत आ रही थी, कैसी मुसीबतें कि हाय अभी हमारे साथ ये क्या हो गया, अभी हमें फतह मिली हुई थी, ये कहाँ से दुश्मन ऊपर हमारे टूट पड़े, तो ये शिकस्त हो गई ना। दूसरी क्या कि हमारे इतने शहीद, यानी इतनी शहादतें हो रही थी उस वक्त, कट कट के गिर रहे थे, जाहिर है दोनों तरफ से हमला उन्होंने कर दिया था, ये तो ऑफ गार्ड पकड़े गए ना, वो तो अपने समेट ले रहे थे माले गनीमत, उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये पीछे आ जाएंगे, उसका गम के हमारे साथी इतने शहीद हो गए, खुद भी लोग जख्मी हुए, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैल गई कि वो तो उनको तो कत्ल कर दिया गया, अब ये इतना बड़ा गम था। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, गम के ऊपर गम आते हैं। किसी ने कहा कि एक चीज खत्म होती दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी खत्म होती तीसरी शुरू हो जाती। लेकिन यहां पे देखें, मैदाने जंग में इनके ऊपर एक खत्म नहीं हो रही थी, एक के ऊपर एक आ रही थी। वो तो जो माले गनीमत तो गया सो गया, उसका तो छोड़े, सोचें कि उसके अलावा कितना, कैसे वो ट्रॉमेटाइज हो गए होंगे, कैसे उनकी हालत होगी उस वक्त, और कैसे भगदड़ मच गई, और किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का भी गम, कि ये हुआ क्या, तो ये हमारे साथ हो क्या गया, एक के ऊपर एक गम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्यों, ये इसलिए नहीं कि तुम अब डाउट करने लगो क्या तो ये तो पता नहीं सच्चे रसूल हैं भी क्या नहीं, नहीं इसलिए लिकैला तहजनु अला मा फातकुम वला मा असाबकुम, इसलिए ताकि तुम इसके बाद जो तुमसे कोई चीज चली जाए ना उस पे गम ना करो, और जो तुम्हें मिल और ना जो जो तुम्हें पहुंचे उसके ऊपर तुम गम ना करो, उससे जो तुमसे चली जाए, जो तुम्हें तुम कोई चीज तुमसे लॉस्ट हो जाती है ना, तो तुम्हारे अंदर बर्दाश्त की कुव्वत पैदा हो जाए। अल्लाह ताला ने इसलिए किया ताकि तुम टफ बन जाओ, क्योंकि जब गम पे गम इंसान के ऊपर पड़ते हैं तो वो टफ हो जाता है इंसान को। ये शिकस्त, ये बाज दफा देखिए जब इंसान हारता है ना तो बहुत कुछ सीखता है उसके अंदर, हार सहने का। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये जो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जो होती है, कि जो इंसान खेलता है तो उसमें वो हारता है तो उससे भी उसको सीखने को मिलता है। इसी तरह दुख तकलीफें आफतें मसाइल इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं, वो उसको टफ बनाते हैं, उसके अंदर स्टेमिना पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने बताया कि जो तुम्हें पहुंचा और जहां जो तुम्हें से गुम हो जाए, फ्यूचर में भी तुम उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत पालो इसके जरिए। जब तुम्हारे ऊपर अगर देखें जो छुई मुई किस्म के लोग होते हैं ना, छुई मुई हम तो यही बन के रहना चाहते हैं, आए जरा से कांटा भी चुभा, आए हाय मैं तो पता नहीं क्यामत ही आ गई मेरे ऊपर, बस सब खत्म हो गया, दुनिया तबाह हो गई, और कब कोई काम करने के काबिल ही नहीं रहते। ऐसे लोग अल्लाह के कामों के काबिल नहीं होते। अल्लाह ताला के काम के काबिल कौन बनते हैं, जो टफ होते हैं। आप देखें पैगंबरों के ऊपर कितने बड़े बड़े मसले आए, कितनी कितनी बड़ी मुसीबतें, और कितने पहाड़ उनके ऊपर टूटे गमों के, अल्लाह ने उनको इस तरह टफ बनाए। आप अपने नबी की जिंदगी देख लें, नहीं एक होता है ना बड़ा होके आदमी के ऊपर कोई चीज, एक बचपन से जिस वक्त उसको कोई समझ भी नहीं है, बहुत छोटा है, 6 साल का बच्चा कितना होता है, माँ की जुदाई का गम, बाप को तो देखा ही नहीं था, माँ होती है उस बच्चे की सारी दुनिया ना उसकी माँ होती है उस वक्त, वो माँ की हस्ती चले जाना, तो अब कोई भी नहीं रह गया, ना कोई बहन भाई है ना माँ बाप, सिर्फ इतनी बात को ही आप ले लेना, आप कहें कि यही इतना बड़ा गम है, इंसान का कहाँ तक उसको मुतासिर करेगा लाइफ में। लेकिन वो एक काम नहीं था, उसके बाद दादा चले गए, उसके बाद चचा थे, चचा के पास भी कोई बहुत कुछ नहीं था, कोई बहुत ऐसे मालदार उस तरह से नहीं थे कि कोई बहुत लग्जरीज में उन्होंने रखा हुआ था, उनके भी सख्त हालात थे, और उसके बाद बड़े होके तो जिस तरह के हालात आपको फेस करने पड़े, तो अल्लाह ने उनको टफ किया, टफ बनाया, और ये इंसान उसी वक्त बनता है जब वो इस भट्टी से गुजरता है। और जिसने कभी कोई चीज ना देखी हो, मसलन हमारे बच्चे इन मुल्कों में रहने वाले, ये बच्चे, खैर मैं बच्चों की इसलिए हमेशा बात करने से अवॉइड करती हूँ कि बच्चों को क्या कहना, हमारे तो अपने हालात हालात बुरे हैं, मुझे ना पसंद होता है हमेशा बच्चों की हम बुराइयां करते रहते हैं, और बच्चे इससे नालाम भी होते हैं कि आप लोगों के पास बस एक ही टॉपिक होता है कि हम ऐसे हैं बुरे, नहीं हम खुद ऐसे हैं। आप देख लें कि अब अपने मुल्क को छोड़ के आ गए, इन लग्जरीज में रहने लगे, जरा सी देर के लिए हमारा एसी बंद हो जाए, फिर हमारी हालत देखें जरा क्या होती, हाय गर्मी जैसे आसमान सर पे उठा लेंगे, पता नहीं क्या हो गया, ओहो मुझसे तो ना नमाज पढ़ी जा रही है ना कुछ हो रहा है, मैं तो बड़ी मुसीबत में, उसके लिए तो यही है। तो हमारे मुल्कों में देखें लाइट कितनी कितनी देर चली जाती है, लोग रहते ही है ना, काम भी कर रहे होते हैं, फिर और चीजों को देख लें इसी तरह, और कई उसमें देख लें कि हमारी इतनी नजाकत आ चुकी है कि जरा कांटा भी चुभ जाए तो हम वाविले करने लगते हैं, जरा सी मुश्किल हमारे अंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। कहाँ देखें वो रेफ्यूजीज कैसे रह रहे हैं, उनके बच्चे कैसे पल रहे हैं, वो किस तरह टेंटों में जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ने उनको फिर टफ बना दिया उस तरह, और हमारे ऊपर जरा सा भी कोई बात इधर से उधर बस हमारी मर्जी के खिलाफ हो गई है ना, फिर हमारी देखें क्या हालत होती। तो ये छुई मुई किस्म के लोग ना बने, टफ टफ, हर चीज में इंसान को टफ होना चाहिए ना ना। बिजलियां जाने के ऊपर, गर्मी हो गई ओहो बहुत ज्यादा, सर्दी हो गई तो तब मुसीबत, गर्मी हो गई तो तब मसले, हाय प्यास लग गई तो तब मसला, भूख लग गई तो हाय कहीं भूख ना लग जाए, उससे पहले ही खा लो भूख ना कहीं लग जाए। वो कैसे लोग हो तुम लोग इस तरह के हो, तो कल तुम्हारा क्या बनेगा, तुम दज्जाल को फेस कर सकोगे बताओ मुझे। अपने बच्चों को तो कहते हैं उनकी बड़ी फिक्रें करते हैं, अपनी हालत के ऊपर पहले गौर करें हम, क्या करेंगे हम, कई गारों में हम जाके रह सकते हैं। जरा सी बात की परेशानी हो जाए तो फिर हमें देखें कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अल्लाह ताला के रास्ते में चलने के लिए ना स्ट्रोंग होना पड़ता है, स्ट्रोंग। तो और वो स्ट्रोंग इंसान जब उसके ऊपर गम पड़ते हैं और उनसे गुजरता है ना इस भट्टी से, तो वो स्ट्रोंग से स्ट्रोंग होता चला जाता है। फिर वो इतना स्ट्रोंग हो जाता है कि फिर छोटी छोटी चीजें उसको मुतासिर नहीं करती, फिर वो गुजर जाता है, और जिसके ऊपर कभी भी ना पड़ी होगी वो तो उसी को लेके बैठा रहेगा। तो इससे हमें समझ में भी ये आता है कि देखें बाज दफा तकलीफ दे हालात जो अल्लाह की तरफ से आते हैं, या कोई शिकस्त मिलती है, या कोई मसाइल आते हैं ना, उनमें भी खैर होती है। क्या पता अल्लाह ने अपने काम का बनाना है, क्या पता अल्लाह ने टफ करना है, क्या पता अल्लाह ताला ने किस तरह से करके इस भट्टी से निकालना है। अल्लाह के ऊपर भरोसा ज्यादा हो जाता है मोमिन का, अल्लाह के साथ तो उसका ताल्लुक मजबूत हो जाता है, उसको टफ चीजें सहने की पता चलता है। तो वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह पता है जो तुम करते हो, अल्लाह जानता है अच्छी तरह। सुम्मा अनजल अलैकुम मिन बादिल गम्मी अमनतन नुआसा यख्शा ताइफतन मिनकुम। तो देखो फिर अल्लाह ताला ने नाजिल की जंग के मैदान में ही क्या हुआ कि एक ऊंग सी आई मुसलमानों के एक ग्रोह को, दो ग्रोह समझ लें। अब इसमें भी मैंने आपको क्या बताया था कि तीन ग्रोह थे, एक तो वो अब्दुल्ला बिन उबई का चला गया था ना, एक इन 700 में भी दो ग्रोह थे, एक तो पक्के मोमिन थे, उनके ऊपर एक ऐसी ऊंग सी आई कि उससे, लेकिन जब इंसान के ऊपर ऊंग आती है ना तो उसे क्या होता है, वो किसी के ऊपर गम भी हो तो साइकोलॉजिस्ट ये डॉक्टर उसको क्या देते हैं, उसको कहते हैं कि आप ना नींद की दवाई लेके सो जाए, उससे आपको सुकून आ जाएगा। जब वो उठता है तो उसकी तबीयत बहाल होती है, फ्रेश हो जाता है। उनको जंग के मैदान के अंदर अल्लाह ने उनके ऊपर ऊंग तारी कर दी कि देख रहे हैं कि एक एक सहाबी फरमाते हैं, मैंने लोगों को देखा कि उनकी वो जंग का मैदान है और वो जैसे सो रहे हैं, और कहते हैं मेरे हाथ से तलवार बार बार गिर रही है, ऐसी ऊंग थी। और ये ऊंग जो थी ना अल्लाह की तरफ से रहमत थी, ये भी रहमत होती है अल्लाह की कि जब किसी को गम में या परेशानी में अल्लाह ताला ऐसी नींद या ऐसी ऊंग तारी उसके ऊपर कर दे। हाँ तो इंसान अपने आप को पहले अल्लाह की रहमत के काबिल बनाए तो फिर है ना कि अल्लाह की रहमत मेरी तरफ मुतवज्जे हो। तो उनको अल्लाह ने ऐसे सुकून दे दिया। एक और भी ग्रोह था, वो भी मुसलमानों का था, वो भी इसी मैदान में था। वताइफतुन कद अहम्मतहुम अनफुसहुम यज़ुन्नूना बिल्लाहि गैरल हक्की ज़न्नल जाहिलिया। वो एक और ग्रोह था जो उनके ऊपर नहीं ऊंग तारी हुई, वो कैसे थे, तहकीक अहम्मतहुम, फिक्र में डाल दिया उनको उनके नफ्सों ने। हाय वो तो परेशान हो गए, हाय हमारा बनेगा क्या, हाय अब हम बचेंगे कि नहीं, हमें मौत ही ना आ जाए, ये क्या बन गया हमारे साथ। यज़ुन्नूना बिल्लाहि गैरल हक्की ज़न्नल जाहिलिया, वो अल्लाह के बारे में ना हक गुमान करने लगे, ऐसा गुमान जो जाहिलियत का गुमान होता है। क्या मतलब होता है जाहिलियत का गुमान, कैसा होता है, यानी अल्लाह की मदद अब तो नहीं हमें कभी मिलनी, अब तो अल्लाह ने हमें छोड़ ही दिया, अब तो हमारा कुछ नहीं होगा। अब इस तरह की अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानियां करने लगे। और ये भी मुनाफिकों का तर्ज अमल होता है कि वो अल्लाह ताला के बारे में बुरे गुमान करने लगते हैं। जब उनके ऊपर कोई मुसीबत टूटती है, बस अल्लाह ने हमारा क्या करना है, हमारा तो कुछ नहीं, अल्लाह ने तो हमें छोड़ दिया। मुखलिस देखें कैसे हैं और ये इन लोगों के हालात कैसे हैं, यानी जाहलियत की ऐसे बातें करना ये सच्चे मोमिन का काम नहीं होता, ये मुनाफिकों का होता है। तो अल्लाह ताला देखता है कि जब तुम्हारे पर मुसीबत आती हो आती है तो तुम अल्लाह के बारे में तो नहीं बदगुमानियां शुरू कर देते। और हमें हमारे हालात भी देखें, कोई फर्क नहीं है, जब कोई मुसीबत ज्यादा बड़ी आती तो सबसे पहले हाय अल्लाह ने हमारी सुनी नहीं, उसने हमारी सुननी ही नहीं है, हमारी कहाँ वो सुनता है, इस तरह की बातें जहन के अंदर आने लगती है। और अगर वाकई इंसान इन बातों के ऊपर यकीन करने लगे तो ये तो मुनाफिकाना रवैया। तो ये यकीन रखना चाहिए, अल्लाह मेरी दुआएं सुन रहा है, कबूल कर रहा है। मुश्किल के वक्त याद रखें, अल्लाह से बदगुमान हो जाना ये मुनाफिकीन का तरीका है, ये मुनाफिकीन का तरीका। यकूलूना, वो कहने लगे, हल्लाना मिनल अमरी मिन शय, हमारी भी कोई बात सुनी जाती है कि नहीं, हमारी भी यहाँ पे कोई से है कि नहीं। जब हमने कहा था कि अंदर रहकर लड़ो मदीना में, तो यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी, मरवाने के लिए हमें यहाँ पे ले आए। इस तरह की बातें करना शुरू हो गए। आप देखेंगे कितनी बुरी बातें वो अपने मुंह से कह रहे हैं। तो देखें, एक होती है मुसीबत पड़ जाना, उसके बाद अल्लाह ने देखना है कि इसका रिएक्शन क्या है बंदे का, ये मुंह से बातें क्या करता है। कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, तो तुम कह दो कि सारा का सारा इख्तियार तो अल्लाह के पास है, मामला उसके पास है, यानी हमने तो अपना मामला उसके सुपुर्द किया हुआ, बस सारा इख्तियार उसके पास। वो कहते हैं ना, हमारी नहीं सुनी गई, हमारी मानी नहीं गई। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जब कोई बात खराब हो जाए तो कहते हैं देखा हमारी नहीं ना मानी गई, हमें नहीं ना पूछा था, या हमने तो ये कहा था ना, नहीं तुमने सुना ना, इसी वजह से ये हुआ है। नहीं, सब चीजों का फैसला अल्लाह के हाथ में है, सब मामला उसके हाथ में है। तो आज भी जो ऐसी बातें करते हैं, जब कोई मामला भी खराब हो जाए, उनको सोचना चाहिए कि ये किसने कहा था, मुनाफिकीन ने, हमने ये नहीं कहना, हमने कहना है इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, सब मामला सारे का सारा अल्लाह के हाथ में, ये ईमान के बगैर नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि हमने अल्लाह के हवाले कर दिया ना, अल्लाह की सुपुर्द है जिसको हम कहते हैं, अल्लाह की सुपुर्द हर मामला। युखफूना फी अनफुसिहिम मा ला युबदूना लक, वो अपने दिलों में छुपा रहे हैं जो नहीं वो जाहिर कर रहे आपके आगे, यानी उनके दिलों में अभी और कितनी बातें हैं, ये क्यों हो गया हमारे साथ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ऐसा फैसला कर लिया। यकूलू ना, वो कहते हैं, लऊ काना लना मिनल अमरी शय मा कुतिलना हाहुना, अगर हमारी बात मान ली जाती यहाँ पे तो ना इस तरह कत्ल होते। देखिए किस किस तरह की बातें निकाल रहे हैं, कि हम यहाँ पे गाजर मूली की तरह कत्ल हो रहे हैं, हमारे लोग कत्ल हो रहे हैं, हम मदीने में बैठे होते, घरों के अंदर होते, ऐसे तो ना होता। अब देख लें, जिनके घरों के अंदर लाशें पड़ी हों उनके सामने ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनके उनको तो हिला देने वाली चीजें हैं ना ये। और उनके दिलों के अंदर भी लीडरशिप के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शकुक व शुभात पैदा करना। अब देखें यहाँ पे दो ग्रुप्स का मुकाबला हो रहा है, एक ताइफा पहले था जिसके अल्लाह ने ऊंघ डाल दी, और एक देखें कैसी बातें कर रहा है मुसीबत के पड़ने पे। एक ने वावेला शुरू कर दिया, जिहालत की बातें और अल्लाह के बारे में बदगुमानी। अब हम क्या करते हैं जब हमें थोड़ा सा भी कोई मसला हो, तो हमारी हालत क्या होती बताएं। कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज अल्लदीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजिहिम, अल्लाह ताला ने इसका जवाब दे दिया कि देखो तुम कह रहे हो ना अगर हमारी बातें ना मान ली जाती हैं तो यहाँ पे ना कत्ल होते, अगर तुम अपने घरों में भी बैठे होते ना, तो वो लोग जिनके लिए अल्लाह ने मौत लिख दी है वो अपनी कत्ल गाहों तक पहुंच जाते। और वाकई आप इन जिंदगी में अनगिनत ऐसे आप इंसिडेंट्स सुने होंगे, आपने देखे होंगे कि एक इंसान अच्छा भला बैठा हुआ है, जहां उसकी मौत लिखी है, वो खुद चल के उधर चला गया, मौत नहीं उसके पास आई, वो चला गया वहां पे जहां पे उसकी मौत आनी थी। कहीं अब ये पिछले दिनों जो जहाज का इंसिडेंट हुआ कराची में, जो जहाज गिर गया था, तो आप देखें कई लोग कहाँ से, मुझे ऐसी ऐसी स्टोरीज पढ़ता चली, वो कहाँ किसी और मुल्क में थे, कोरोना की वजह से उनको और नहीं कहीं फ्लाइट मिली, तो वो इधर आए लाहौर आए, फिर वहां से उन्होंने फ्लाइट पकड़ी कराची की, उन्होंने असल में वहां जाना था, असल में अल्लाह ने उनको उस जहाज में बिठाना था और वहां पे उनकी मौत आनी थी, और उसमें भी एक बंदा जहाज में बैठा हुआ बच गया, और वो लोग जो अपने घरों में नीचे बैठे हुए उनमें से मर गए। वो तो अपने घरों में बैठे ये सोच रहे होंगे ना, हम कौन सा रोड में, हमें तो कोई हादसा नहीं आ सकता, मैं जवान भी हूं, मुझे कोई बुढ़ापा नहीं है, ना मुझे कोई ऐसी बीमारी है, ना कोई चोर डाकू हमारे घर आ रहा है, हमने दरवाजे भी अच्छी तरह बंद किए, हमें कहां से मौत आ सकती है। उनको ये नहीं पता था कि मौत उनके सर के ऊपर आके गिर जाएगी। हम क्या देखते नहीं इतने वाकयात, हम क्या देखते नहीं किसी ने किसी जगह पे जाना था, वो वहां पे लेट पहुंचा और उसे पहले वहां पे कोई हादसा हो गया।
और जिसने नहीं भी वहां पे पहुंच जाना था, उसको कोई काम ऐसा पड़ गया, कोई ऐसी मजबूरी पड़ गई, वो वहां पे बैठ गया। किसी का मुझे पता चला वो एक मीटिंग में था, उसकी तबीयत खराब हुई, वो मीटिंग से निकला, उसने टैक्सी ली। अब टैक्सी ली, उसने कहा मैं घर पहुंच जाऊं, और रास्ते में उसको उल्टी आने लगी, तो उसने दरवाजा खोला उल्टी करने के लिए, पीछे से गाड़ी आई और उसको उड़ा के ले गई, मर गया। वो उसकी मौत उस ब्रिज पे उस जगह पे लिखी हुई थी, वो वहां पे खुद पहुंचा, वो मीटिंग में बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। उसने कभी उस वक्त जगह पे उस वक्त में नहीं आना था, वो तो अपने ऑफिस में होता। इंसान अपनी मौत की जगह, अपनी कत्लगाह पे खुद चल के जाता है, खुद चल के जाता है। तो तुम कैसे कह रहे हो कि अगर वो ना जाते, ये हमारी बात मान ली जाती, अगर ये हो जाता तो ना कत्ल होते। ये बात हमें सिखाती है कि सारी जिंदगी के लिए हम ये कहना बंद कर दें, अगर वो घर से ना निकलता तो उसका एक्सीडेंट ना होता, अगर वो मेरी बात सुन लेता तो ये चीज ना होती, तो उसको मौत ना आती, अगर वो वहां ना जाता तो ऐसे हो जाता। नहीं, देखें मौत के आगे आप रोक नहीं लगा सकते कि मेरी बात सुन लेता तो ना जाता, उस गाड़ी में ना बैठता, इस जहाज में ना बैठता, इस जगह ना जाता, ये दवाई खा लेता, एम्बुलेंस जल्दी आ जाती, डॉक्टर ट्रीट कर देता, उसको मौत ना आती, फलाने अस्पताल में हम ना जाते तो मौत ना आती। नहीं, आप रोक सकते, उसने जाना है वहां पे और उसने मरने के लिए जाना है, उसकी वही मौत है। कई लोग कोई दूसरी जगह पे जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में गए, कोई किसी जगह विजिट करने के लिए गए, थोड़ी देर के लिए गए, वहां पे उनकी मौत लिखी। तो तुम ये नहीं कह सकते, देखो ये मुनाफिकों की बातें हैं, लेकिन हमारे आम जिंदगी में कितनी कॉमन है कि हम यही बातें करते हैं, हर बात पे किसी का सुन लेंगे ना, हाय अगर वो ना ऐसा करते ना तो ये ना होता। ये शैतान की तरफ से होती है अगर मगर, वाली अब तली अल्लाह माफी सुदूरी को, और ताकि आजमाए अल्लाह उसको जो तुम्हारे सीनों में, वाली युमा हिसा माफी कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारा टेस्ट करना चाहता है, ये टेस्ट के बगैर ये चीजें सामने नहीं आ सकती, पता नहीं चलेगा किसने उस वक्त क्या बात बोलनी है। ये आम हालात में तो नहीं, अच्छे भले घरों में बैठे हुए तो नहीं कोई कुछ कहेगा ना, ये तो इसी वक्त में पता चलता है कि किसकी जुबान कैसी है, किसका सब्र कैसा है, किसका हौसला कैसा है, कौन संभाल के बात करता है, किसके अखलाक क्या है। कई तो बिल्कुल ही अखलाक से ही गिर जाते हैं, उनके मुंह से गालियां निकलने लगती हैं, वो क्या क्या करने लगते हैं, किसको ब्लेम करने लगते हैं, उसकी वजह से ये हो गया, उसने ये कर दिया। तो नहीं, देखो ये चीजें इंसान को कितना स्ट्रांग बना देती है ना, कि ये अल्लाह तला की तरफ से आजमाइश है, ताकि तुम्हारे सीनों में जो है ना अल्लाह उसको निकालना है। सीला माफी सुदूर, कयामत के दिन तो अल्लाह ने सारा ही निकाल के बाहर कर देना। अभी भी इंसान अपने अमल से दिखाता है, साबित कर देता है कि मेरे अंदर ये है, वो देखो निकल आई ना बातें, वो छुपी हुई थी अंदर, वो बोलने शुरू हो गए। और अल्लाह ताला खालिस कर दे मोमिनों के दिलों को, उनके अंदर कोई खोट भी है तो अल्लाह उस खोट को अलग कर दे, क्योंकि जब खोट होता है ना और इंसान को पता चल जाए कि मेरे अंदर ये बुराई है, तो तभी वो इस्लाह कर सकते हैं, वरना बाज दफा हमसे हमारी अपनी बुराइयां भी छुपी रह जाती हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़ात सुदूर, अल्लाह जानता है जो दिलों के अंदर है, सीनों के जो राज हैं, जो इंसान को बाज दफा खुद भी नहीं पता होते, अल्लाह को वो पता है। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमानी, जो बेशक वो लोग जो मुंह मोड़ गए जिस दिन आमने सामने हुई दो जमातें, यानी वो भाग गए, जब अफरा तफरी मची थी ना, जब पैनिक मची थी, तो घबराहट के आलम में वो भागने शुरू हो गए जिधर मुंह था। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने उनकी सफाई पेश भी फरमाया, इन्ना मस्तज़ल्लहुम शैतानु, शैतान ने उनको फसलाया था, लेकिन किस वजह से शैतान उन पे कैसे गालिब आ गया, बेबादी मा कसबू, इस वजह से कि जो उन्होंने कमाई की थी, जो उनके बास आमाल थे उनकी वजह से, बास खताएं थी उनकी वजह से शैतान उनके पर हावी हुआ। इससे पता चलता है कि शैतान भी तब हावी हो पाता है, शैतान को भी दरवाजा तब मिलता है अंदर आने का, जब इंसान से खुद कोई कमी रह गई हो, जब खुद उससे कोई बुराई हो गई हो, तब इंसान ना एक्चुअली स्पिरिचुअली वीक हो जाता है, तो शैतान गालिब आ जाता है। वलकद अफल्लाहु अन्हुम, लेकिन अल्लाह ने उनको भी माफ कर दिया, इन अल्लाह गफूर हलीम, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला, बड़ा हिल्म वाला है, बड़ा बुर्दबार है, फौरी नहीं पकड़ लेता और ये सजाएं नहीं देने लगता कि इसने ऐसे किया तो उसको, हमारी जैसी आदतें होती हैं ना कि जब किसी से कोई भी गलती हो जाए फिर उसको छोड़ना ही नहीं, फिर उसको दबा देना, फिर उसको फौरन करना कि नहीं, उसको डांटना है या उसकी पकड़ करनी है या उसको मारना है या उसको सजा देनी है,
नहीं, अल्लाह का पास बड़ा तहम्मुल है, तहम्मुल, इसीलिए तो उसने जाने दिया, माफ कर दिया, कोई बात नहीं। इसकी और भी तफसीर हो सकती थी लेकिन वक्त चूंकि कम है तो यहां तक ही रखते हैं इंशाल्लाह ताला। तिलावत सुनते हैं इन आयात की। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم